श्रोताओं नमस्कार, मैं रुद्र भानु प्रताप पुनः आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ यूरोप के इतिहास का दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है नेपोलियन एक महान क्रांति हंता। तो श्रोताओं, आइए शुरू करते हैं नेपोलियन के विषय में अपने इस अध्ययन को। फ्रांस के दक्षिण में भूमध्य सागर में कार्सिका टापू है। कार्सिका इटली के राज्य जेनोवा के अधिकार में था। क्रांति के कुछ दिन पहले ही इस पर फ्रांस का अधिकार हुआ था। सांस्कृतिक दृष्टि से वह इटालियन क्षेत्र था। राजनीतिक रूप में भी वहां असंतोष था और एक वर्ग ने विद्रोह कर रखा था। उन्हीं विद्रोही लोगों का एक नेता पालोई फ्रांस के विरुद्ध निरंतर संघर्षरत था। पालोई के घर ही नेपोलियन 15 अगस्त 1769 को पैदा हुआ था। यद्यपि उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी मां लातिसिया पर था, इसे एक बार और सुने। यद्यपि उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके मां लातिसिया पर था, तथापि नेपोलियन बोनापार्ट अपने पिता से ही विशेष प्रभावित हुआ। भाई बहनों से भरे पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति कहीं ठीक नहीं थी। कभी कभी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नेपोलियन अन्य भाई और बहनों से अलग थलग प्रायः एकाकी जीवन व्यतीत करता था। उस समय उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा नहीं था कि कोई यह कहता हो कि होनहार विद्वान के चिकने पाप। बस एक ही चीज थी जो सबका ध्यान आकर्षित करती थी। दुबला और पतला, कमजोर लड़कियों की जैसा दिखने वाला नेपोलियन अकेले जमीन पर रेखाएं खींचता रहता या किले बनाता तोड़ता रहता था। पढ़ने में उसकी विशेष रुचि नहीं थी, परंतु कुछ विशेष विषयों यथा प्रायः वह भूगोल, इतिहास, गणित और महापुरुषों की जीवनियां पढ़ना पसंद करता था। वह जूलियस सीजर और सिकंदर से बहुत प्रभावित था। जब फ्रांस ने कार्सिका के विद्रोहियों को समर्थक बनाने के लिए उन्हें रियायतें देनी शुरू की तो उसके जीवन पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा। उसे ब्रियन स्थित फ्रांस के सैनिक विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। उस विद्यालय में प्रायः सामंतों और धनिकों के लड़के पढ़ते थे। नेपोलियन वहां हीन भाव से ग्रस्त रहता था और औरों की अपेक्षा सीमित साधनों को देखकर वह दुखी और निराश होता था। वह अपनी माँ को ऐसे खत लिखता जिसमें जीवन के प्रति उसकी निराशता दिखाई देती, यहाँ तक कि उसने आत्महत्या करने की सोची। विद्यालय में पढ़ते समय उसे नौसेना से रुचि हुई। उसे तोपखाने के लिए चुना गया और दुनिया के इतिहास में सुविख्यात महानतम जनरलों में से एक नेपोलियन स्थल सेना में भर्ती हो गया। सेना में उसका प्रारंभिक जीवन साधारण था। क्रांति के प्रारंभिक दिनों में वह जैकम्बो विचारों का समर्थक हो गया, परंतु अराजकता बढ़ने लगी तो व्यवस्था और अनुशासन का हिमायती नेपोलियन क्षुब्ध रहने लगा। एक बार उसने पेरिस में राजमहल पर भीड़ के आक्रमण को स्वयं देखा और क्रोध में कहा, कितना महान मूर्ख है लुई, तोप चलाकर 150 लोगों को भून दे तो सब शांत हो जाएगा। यह सच भी था, लेकिन लुई में निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। नेपोलियन ने स्वयं अपने समय आने पर यही किया और पेरिस पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल हुआ। जिस समय राजा के समर्थन में फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और विदेशी शक्तियां, विशेषकर इंग्लैंड, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विद्रोहियों की मदद कर रही थी, नेपोलियन को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिला। फ्रांस के दक्षिण में स्थित तुलो बंदरगाह में अशांति थी। राजा के समर्थकों को दबाने की जिम्मेदारी नेपोलियन को सौंपी गई, जो वहां कनिष्ठ अधिकारी था। उसने पहली ही बार तोपखाने का अद्भुत प्रयोग करके शीघ्र ही विद्रोहों का दमन कर दिया। यह उसकी प्रारंभिक सफलता थी और जीवन भर उसने तोपखानों का अभूतपूर्व इस्तेमाल करने में सफलता पाई। इसके बाद उसे कोर्नो के पास एक पत्र देकर भेजा गया। पत्र में लिखा था, मैं एक योग्य युवक भेज रहा हूँ, उसकी उन्नति का ध्यान रखिएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भी वह स्वयं को आगे बढ़ाने में समर्थ है। स्पष्ट था कि उसके संपर्क के लोग उसकी योग्यता और संभावनाओं से परिचित और आतंकित होने लगे थे। कन्वेंशन के दिनों में वह पेरिस में घूमता रहा और भीड़ के व्यवहार से काफी क्षुब्ध था। एक बार जब भीड़ ने कन्वेंशन पर आक्रमण करना चाहा, तो उसने वरिष्ठ अधिकारियों से कुछ पीछे बिना ही लोगों को भून डाला और भीड़ तितर बितर हो गई। अब उसकी तरक्की तेजी से होने लगी। उसे बड़े परिवारों और पार्टियों में निमंत्रित किए जाने लगा। इन पार्टियों में वह अपने को व्यवस्थित नहीं कर पाता। यहाँ के कुलीन और धनिक लोग तथा फैशन परस्त और उच्च श्रृंखल औरतों के बीच वह खड़ा शून्य में निहारा करता। निम्न परिवार में जन्म लेने का संस्कार उसे जीवन भर ग्रस्त किए रहा। बाद में इन पार्टियों में सम्मिलित कुछ लोगों को दो चमकती आकर्षक आंखें हमेशा याद रहीं। जब डायरेक्टरी की शासन व्यवस्था लागू हुई, तो उसे पेरिस के प्रशासन द्वारा लोगों को निशस्त्र करने का भार सौंपा गया। उसने बड़ी योग्यता और शांतिपूर्वक लोगों से हथियार डलवाना शुरू किया। एक दिन एक दिलचस्प घटना हुई। उसके दफ्तर में एक छोटा सा लड़का भागता हुआ आया। उसके हाथ में एक बंदूक थी। उसके पीछे सिपाही दौड़े आ रहे थे। लड़का ने घुसते ही नेपोलियन से कहा कि अपने पिता की बंदूक किसी को नहीं देगा। नेपोलियन इस बालक से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उस बंदूक के साथ लौट जाने दिया। दूसरे दिन वह बालक अपनी माँ के साथ आया। माँ ने धन्यवाद दिया और दावत दी। दोनों की मित्रता बढ़ी। एक दिन यह जानकर सारा पेरिस अवाक रह गया कि जोसेफिन और नेपोलियन ने विवाह कर लिया। जोसेफिन बोआरन के पति वेस्टइंडीज में सिल्क के कपड़ों का व्यापारी था और वह क्रांतिकाल में ही मारा गया था। विधवा जोसेफिन अपने लड़के यूजैन और लड़की आर्तांज के साथ पेरिस में रहती थी। जोसेफिन रूपवती नहीं थी, लेकिन उसकी चाल ढाल और रहन सहन में गरिमा थी। वह जीवन से निराश नहीं हुई थी। सभा समाजों में उसका आना जाना जारी था। पार्टियों में वह मनचले अधिकारियों और धनिकों के आकर्षण का केंद्र थी। निदेशक मंडल के भ्रष्ट सदस्य बर्रा से उसकी विशेष मित्रता थी। नेपोलियन से उम्र में बड़ी, दो बच्चों की माँ, फैशन की प्रेमी और खर्चीले स्वभाव की जोनसिन, अभिजात्य विहीन गुमसुम रहने वाली नेपोलियन की क्या मित्रता। यह सच है कि दोनों में प्रेम था। मरते समय नेपोलियन के जवान पर तलाक होने के बावजूद जोसेफिन का नाम था। फिर भी यह विवाह सोच समझ कर परंपरा हितों के लिए किया गया था। जोसेफिन की उम्र बढ़ती जा रही थी। उसे पार्टियों में चाहे जितने लोग बुलाते रहे हों, उससे विवाह करने की शायद ही कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति तैयार था। इस महत्वाकांक्षी महिला ने अपना जीवन को समाप्त समझकर विधवा की तरह जीवन बिताना स्वीकार नहीं किया। नेपोलियन के जीवन में उसे अपने जीवन की सफलता दिखाई पड़ रही थी। दूसरी ओर नेपोलियन की उत्कंठ महत्वाकांक्षाओं को अभिजात वर्ग का बल चाहिए था। उसे उच्च लोगों में पहुंचने का कोई साधन नहीं था। जोसेफिन जैसी प्रभावशाली महिला उसके जीवन में पूरक कार्य कर सकती थी। अंत में यह साबित हो गया, क्योंकि विवाह के कुछ दिन बाद ही नेपोलियन इटली के अभियान का सेनाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। उसके जीवन का उभार शुरू हो गया। प्रथम इटालियन अभियान। श्रोताओं, हमारा अगला टॉपिक है प्रथम इटालियन अभियान। जब नेपोलियन अपनी सेना का नेतृत्व करने पहुंचा, तो युद्ध कला में वह कच्चा और अनुभवहीन सेनापति था। सेना ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। वह सेना किसी भी दृष्टि से संतोष प्रदान करने वाली नहीं थी। इसे विजय अभियान की ओर उन्मुख करना सरल नहीं था। छोटे कद का नेपोलियन एक तिकोनी लंबी टोपी लगाकर प्रायः घोड़ों की पीठ से ही सेना को संबोधित करने और उसे अपने प्रभाव में लाने का प्रयास करने लगा। उसने सैनिकों को आह्वान किया कि सैनिक भूखे और अभावग्रस्त हैं। पहाड़ों के उस पार इटली में दुनिया का सबसे उर्वरक मैदान है। वहाँ सब कुछ है, सुख सुविधा और कला के भंडार। वहाँ पहुँचने में ही कल्याण है। युद्ध के दौरान स्वयं जोखिम उठाकर उसने रिवोली और आर्कोला के अविश्वसनीय युद्ध जीते। इसे एक बार और सुने। युद्ध के दौरान स्वयं जोखिम उठाकर उसने रिवोली और आर्कोला के अविश्वसनीय युद्ध जीते। यह बात किसी कहानी जैसी प्रचलित होने लगी कि नेपोलियन अमर्त्य है। उसी समय उसने घोषित किया कि उसके निजी शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। इटली के राज्यों को जीतकर उसने वहां फ्रांस जैसा गणतंत्र स्थापित किया। युद्ध का खर्च उसने विजित प्रदेशों से निकालना शुरू किया। फ्रांस की जनता को बिना आर्थिक बोझ बर्दाश्त किए विजय का उपहार मिलने लगा। साथ ही कला प्रेमी फ्रांसीसी जनता के नाम वह इटली में सुरक्षित असाधारण कला संग्रहालयों से चुन चुनकर चित्र मूर्तियां और अन्य कलात्मक उपहार भेजने लगा। उसकी हर विजय एक योजना के तहत होती थी और उसका खूब प्रचार किया जाता था। यद्यपि वह मनमाने ढंग से कार्य करने लगा, परंतु ये सारे कार्य फ्रांसीसी गणतंत्र के नाम से ही होते थे। पोप के प्रदेशों को जीतने के बाद उसने उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं किया। उसने वेटिकन सिटी के राजप्रसादों से बहुमूल्य चित्र और मूर्तियां हटाकर फ्रांस भेज दी और नए गणतंत्र से 6 करोड़ फ्रैंक भी हड़प लिया। धीरे धीरे वह ऑस्ट्रिया की राजधानी के पास पहुंच गया। वहां के शासक को हार मानकर संधि करनी पड़ी। कैंपो फोर्मियो की संधि में उसने विलक्षण कूटनीतिक प्रतिभा का परिचय दिया। ऑस्ट्रिया ने अपने अधीन नीदरलैंड को फ्रांस को दे दिया। दक्षिण में लोम्बार्डी का प्रदेश भी फ्रांस को मिला। उसके बदले ऑस्ट्रिया को इटली के उत्तर पूर्व में स्थित वेनिस दे दिया गया। इटली में स्थापित गणतंत्रों को ऑस्ट्रिया ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार एक ही अभियान में नेपोलियन ने वह कर दिखाया जो लुई चौदहवां जैसे शासक 4 युद्धों में या जीवन भर लगाने के बावजूद नहीं कर पाए। फ्रांस को राइना नदी के रूप में प्राकृतिक सीमा मिल गई। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया की मध्य यूरोप में दिलचस्पी के कारण फ्रांस में उससे प्रतिद्वंदिता चलती रही। उसे दक्षिण पूर्व में वेनिस की ओर उन्मुख करके उसने ऑस्ट्रिया को बाल्कन प्रायद्वीप की ओर मोड़ दिया, जहां उसकी प्रतिद्वंदिता रूस और तुर्क से हो सकती थी और हुई भी, जिसकी भयंकर परिणति प्रथम विश्व युद्ध में दिखाई पड़ती है। उसके दिमाग में अपनी योजनाएं अस्पष्ट थी। वह मिलान में बकायदा दरबार करता था। उसने बातचीत के दौरान कहा भी, मैं यह सब क्या डायरेक्टरी के वकीलों के लिए कर रहा हूं? डायरेक्टरी एक बार मुझे बर्खास्त करके तो देखे, उसे पता लग जाएगा कि वास्तव में शक्तिशाली कौन है। फ्रांस को स्वतंत्रता से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें तो एक राज्याध्यक्ष चाहिए जो गरिमा मंडित हो। उसके दर्शन और आदर्शों को फ्रांस नहीं समझता। इस तरह सैनिक राजनीति और कूटनीति सफलता के बाद जब वह फ्रांस लौटा तो उसकी घर घर में चर्चा होने लगी। उसके जैसा प्रभाव किसी व्यक्ति का नहीं था। शासक अब आतंकित हो गए, उसे बस सही वक्त का इंतजार था। मिस्र का अभियान। श्रोताओं, हमारा अगला हेडिंग है मिस्र का अभियान। नेपोलियन चाहता तो इस समय सत्ता पर अधिकार करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन वह स्थितियों को और पकने देना चाहता था। कैंपो फोर्मिया के समय उसने कहा था, फ्रांस के निदेशकों में एक भी नहीं जो धन पाकर उसके जूते चूमने को तैयार न हो जाए, पर वह अभी समय आने का इंतजार करना चाहता था। अब फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में केवल इंग्लैंड बच गया था और इंग्लैंड से प्रत्यक्ष लड़ाई के लिए फ्रांस तैयार नहीं था। इंग्लैंड अपने पूर्वी उपनिवेशों को विशेषकर भारत से व्यापार के कारण ही समृद्ध था। इंग्लैंड के व्यापार को क्षति पहुंचाकर और उपनिवेशों के संबंध विच्छेद करा के उसकी पीठ में छुरा भोंका जा सकता था। उसने कहा कि मिस्र में फ्रांसीसी सत्ता कायम हो जाने से भूमध्य सागर का उपयोगी फ्रांसीसी झील जैसा किया जा सकेगा। मिस्र इंग्लैंड और भारत के मार्ग में स्थित है। इसके महत्व को देखते हुए उसने मिस्र के विजय की योजना प्रस्तुत की। वह दूर रहकर देश की आंतरिक स्थितियों को और अधिक बिगाड़ने देना चाहता था। वह जानता था कि निकट भविष्य में फ्रांस को यूरोपीय शक्तियों से फिर से निपटना पड़ेगा। यदि वह फ्रांसीसी सेना की सर्वोत्तम टुकड़ी के साथ मिस्र चला जाता है और फ्रांस के खतरे में पड़कर उन्हें वापस बुलाता है तो वह तत्काल देश रक्षक की हैसियत से ख्याति प्राप्त कर लेगा। दूसरी ओर निदेशक मंडल के सदस्य भी उसे दूर ही रखना चाहते थे, इसलिए मिस्र अभियान की योजना शीघ्र ही स्वीकार कर ली गई। इतिहास के इस अभियान का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसमें केवल 40,000 सैनिक नहीं थे, 120 भूगर्भशास्त्री, पुरातत्ववेता, डॉक्टर, इंजीनियर और इसी तरह विभिन्न विषयों के दक्ष अधिकारी लोग भी थे। समुद्री क्षेत्र पर इंग्लैंड का एक छत्र राज्य था। उसके पास नेल्सन जैसा नौसेना का प्रख्यात और कुशल कमांडर था। फिर भी नेपोलियन को मिस्र पहुंचने में सफलता मिली। वहां उसने विश्व के प्राचीनतम स्मारकों में से एक पिरामिडों की छाया में अबूकर की लड़ाई लड़ी और मिस्र को पराजित किया। इसके बाद वह महत्वपूर्ण विजय शुरू हुआ जिसके ज्ञान की एक नई शाखा इजिप्टोलॉजी को जन्म दिया। मिस्र के शिलालेख, वहाँ की वनस्पति, इतिहास, हर चीज का अध्ययन शुरू हुआ और एक पुरानी सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर पहली बार प्रकाश पड़ा। नेपोलियन के अस्थाई महत्व के कार्य में इस खोजबीन की गणना की जाएगी। अभी यह काम पूरा नहीं हुआ था कि नेल्सन मिस्र आ पहुंचा। उसने नील के युद्ध में फ्रांस के बेड़े नष्ट कर दिया। इसी समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेली ने सेना भेजी। नेपोलियन बुरी तरह घिर कर पराजित हो गया। यूरोप के शासकों ने नेपोलियन के हार से खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सामंत नारियों के खुशी के आंसू निकल पड़े। लेडी हैमिल्टन ने तो ईश्वर से प्रार्थना की कि वे बहादुर नेल्सन की रक्षा करें क्योंकि वही उनका उद्धारक और रक्षक है। पहले नेपोलियन ने सीरिया होते हुए भूमार्ग से यूरोप लौटने का प्रयास किया, लेकिन बीमारी और अंग्रेजों द्वारा लगातार पीछा किए जाने के कारण उसकी सेना नष्ट होती जा रही थी और वह लाचार होता गया। अब तो यही चारा था कि या तो वह आत्मसमर्पण कर दे या फिर रेगिस्तान में गिरफ्तार हो अथवा लड़ते हुए मारा जाए। फिर भी वह हताश नहीं था। उसने एक विवादास्पद निर्णय लिया। अपने थोड़े से साथियों के साथ वह छोटे से जहाज में फ्रांस लौटने का फैसला किया। बचे हुए सैनिकों को उनके भाग के भरोसे छोड़कर वह भाग निकला। फीसर ने व्यंगपूर्ण शब्दों में कहा है कि नेपोलियन का मिस्र अभियान बड़े धूमधाम के साथ शुरू हुआ था। उसका अंत इस प्रकार हुआ कि नेपोलियन को किसी षड्यंत्री भगोड़े की तरह भागना पड़ा। नेपोलियन अपने को नियतिवान मनुष्य, मैन ऑफ हेस्टिनी, कहा करता था। उसका यह दावा कुछ दिनों तक विश्वसनीय इसलिए बना रहा कि संयोग उसके पक्ष में था। इस वक्त भी संयोग से वह बच निकला। जब वह फ्रांस लौटा तो स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी और किसी ने यह नहीं पूछा कि मिस्र का अभियान का क्या हुआ। सब उसकी ओर आंख लगाए बैठे थे। निम्न कोटि के प्रशासकों ने फ्रांस को जड़ बना लिया था। अव्यवस्था और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर थे। नेपोलियन की विजय पर पानी फिर गया था। इंग्लैंड पुनः यूरोप के राज्यों को संगठित कर रहा था। लोगों को क्रांति से चिढ़ हो चली थी। नेपोलियन ने समझ लिया कि उपयुक्त समय आ गया है। उसने अपने साथ सहानुभूति रखने वाले लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। प्रत्यक्ष रूप से उसने अपना विनम्र और शांतिवादी स्वरूप प्रस्तुत किया। विद्वानों की संगति में बैठकर वह मिस्र की खोजों पर बात करता। विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों की योजना बनाते हुए उसने आपसे सीए तालीरा और फूसे जैसे लोगों को मिला लिया। नेपोलियन की भाषा लुसिया 500 सदस्यों नेपोलियन का भाई लुसिया 500 सदस्यों की परिषद का अध्यक्ष था। पेरिस से थोड़ी दूर पर सैंक्लू के महल में सभा का अधिवेशन बुलाया गया। तीन प्रमुख निदेशकों से जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया। शेष दो नज़रबंद कर दिए गए। महल के चारों ओर विश्वासपात्र सैनिक लगा दिए गए। जब नेपोलियन वहां भाषण देने पहुंचा तो उसने देखा कि सदस्यों ने उसका खुला स्वागत नहीं किया। जब उसने तत्कालीन सरकार की कटु आलोचना की तो कुछ सदस्यों ने उसका मकसद समझ लिया। वे चिल्लाने लगे कि तुम्हारा उद्देश्य जानते हैं, तुम तानाशाह बनना चाहते हो। जीवन में पहली बार नेपोलियन को गस आ गया। उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त होती प्रतीत हुई। लुसिया ने स्थिति संभाली। वह नेपोलियन को पकड़कर पास के कमरे में ले गया। सिपाहियों ने गोली चलानी शुरू कर दी और सदस्य जान बचाने के लिए इधर उधर भाग खड़े हुए। कुछ विश्वस्त लोगों की सभा बुलाई गई। प्रस्ताव पेश हुआ कि संविधान में परिवर्तन आवश्यक है। सीए को नए संविधान बनाने का दायित्व सौंपा गया। 7 नवंबर 1799 को क्रांति के इस 10 वर्षों के बाद सत्ता पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया गया। नया संविधान, हमारा अगला हेडिंग है नया संविधान। नया संविधान नेपोलियन की योजना के अनुसार नीचे से विश्वास और ऊपर से सत्ता की नीति को नीति के क्रम में तैयार हुआ था। दूसरे शब्दों में यह जनता से विश्वास और अनुशासन की अपेक्षा रखता था क्योंकि सत्ता नेपोलियन के हाथ में केंद्रित थी। इस संविधान के अनुसार 30 वर्षों के लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया। सभी मतदाता अपने क्षेत्र के 10% लोगों का निर्वाचन करते थे। इस प्रकार एक स्थानीय सामूहिक सूची तैयार होती थी जिसके प्रतिनिधि अपने जिले से 10% लोगों को चुनकर डिपार्टमेंट की सूची तैयार करते थे। अंत में ये लोग पूरे देश के लिए अपने 10 मांस को चुनकर राष्ट्रीय सूची बनाते थे। इस सूची में राष्ट्रीय पैमाने पर चुनाव होते थे। स्पष्ट है कि चुनाव का ढंग या ढंग ढोंग मात्र था। व्यवस्थापिका के लिए 4 सदनों का प्रावधान किया गया, 1 काउंसिल ऑफ स्टेट, 2 सीनेट, 3 ट्रिब्यूनेट और 4 लेजिस्लेटिव बॉडी। ये सदन नियुक्तियों और चुनाव की जटिलता से इस प्रकार जकड़े थे कि वास्तव में इनका सदस्य वही हो सकता था जिसको नेपोलियन चाहे। कार्यपालिका के लिए 3 सदस्यों का कार्यपालिका के लिए 3 सदस्यों की एक कौंसुला समिति का प्रावधान किया गया। इनमें से एक को प्रथम कौंसुल और समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह पद 10 वर्षों के लिए नेपोलियन को दे दिया गया। प्रथम कौंसुल यानी नेपोलियन को के हाथ के ही हाथों में सारी सत्ता केंद्रित कर दी गई। अब नेपोलियन फ्रांस में सर्वशक्तिमान था। कोई पूछता कि संविधान में क्या है तो उसे क्या उत्तर मिलता, नेपोलियन नेपोलियन और सिर्फ नेपोलियन। अब प्रजातंत्र का केवल एक मुखौटा ही बच के रह गया था। नेपोलियन उसे भी शीघ्र उतार कर सम्राट बन बैठा। संविधान घोषित होने के कुछ ही दिनों बाद उसने एक जनसंग्रह करवाया। फ्रांस की जनता ने उसे भारी मतों से 30 लाख पक्ष में और 1562 विपक्ष में इस संविधान अर्थात नेपोलियन को स्वीकार कर लिया गया। इसका अर्थ यह नहीं था कि फ्रांस का बहुमत पूरी तरह से उसके पक्ष में था, लेकिन समस्या यह थी कि जटिल प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में कैसे दिया जाता। जिस जनता ने क्रांति करके प्रतिष्ठित बुर्बो वंश के लुई को मृत्युदंड दिया था, उसी ने एक अज्ञात परिवार के तनासाह को स्वीकार कर लिया। अगली हेडिंग है नेपोलियन की सफलता के कारण। श्रोताओं, हमारी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि नेपोलियन के सफलताओं के कारणों की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर हम निम्न हेडिंग के अंतर्गत ढूंढेंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। नेपोलियन की सफलता के कारण को समझना इसलिए नहीं जरूरी है कि उससे किसी व्यक्ति के गुणों का मूल्यांकन हो सकता है। उसे इसलिए जानना चाहिए कि इतिहास धारा में घटनाओं और उसके महत्वों का मूल्यांकन हो सके। तदुपरांत भी यह जाना जा सकेगा कि कैसे एक प्रगतिशील आंदोलन भटककर प्रतिक्रियावादी शक्तियों को मजबूर बना देते हैं और क्रांति के गर्भ में तनासाह जन्म ले लेता है। नेपोलियन की सफलता के कारण एक तरफ तात्कालीन स्थितियों को में तो दूसरी तरफ उसे उसके अपने चरित्र में मिलेंगे। फ्रांस में क्रांति इसलिए हुई कि वहां जरूरत थी, असंतोष था और परिवर्तन की उत्कट इच्छा थी। वहां एक वर्ग था जो अपनी जरूरतों के लिए परिवर्तन करना चाहता था क्योंकि स्थितियों को अपने अनुकूल नहीं पा रहा था। पुरातन व्यवस्था खोखली हो गई थी और आधुनिकता के तत्व उसे ध्वस्त कर एक आधुनिक तंत्र की स्थापना करना चाहते थे ताकि आर्थिक स्थितियों में जो परिवर्तन हुए थे उनका सही दिशा में विकास हो सके। परिवर्तन के वाहक मध्यम वर्ग ने आम जनता की कठिनाइयों को भी सामने रखकर जनता का असंतोष उभारा था, लेकिन वस्तुतः वही परिवर्तन हुए जिससे आम जनता को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं हुआ। क्रांतिकारियों की चर्च विरोधी नीति के कारण जनता के धर्म में रूढ़िवादी विश्वासों को चोट पहुंचाई। संपत्ति सामंतों के हाथ से निकलकर धनिकों के हाथ में चली गई। मत देने का अधिकार जनता को नहीं था। रोटी सस्ती नहीं थी। क्रांति के अंतिम दिनों में कानून और व्यवस्था का कोई मतलब नहीं रह गया था। फिर क्रांति किस लिए? निदेशक मंडल के शासनकाल में तो स्थिति यह हो गई कि सब कुछ ठप पड़ गया। पुरानी व्यवस्था ध्वस्त हो गई और नई निष्क्रिय थी। जो रूबिके ने फ्रांस की तुलना एक घड़े से की थी, उसके अनुसार पुरातन व्यवस्था में घड़ी खराब थी, देर से चलती थी परंतु चलती थी, किंतु क्रांति ने उस घड़ी को ही तोड़ दिया। इस तरह का क्रांति विरोधी वातावरण के विकल्प का प्रश्न उठा। फ्रांस में स्थिरता, व्यवस्था और सम्मान की स्थापना कौन कर सकता था? लोगों का ध्यान नेपोलियन की ओर आकर्षित हो रहा था। नेपोलियन कहता था, यदि मुझे पुरातन राजतंत्र और जैकोम्बो अव्यवस्था में किसी एक को चुनना पड़े तो मैं पुरातन राजतंत्र को चुनूंगा। उसी तरह फ्रांस के लोग भी अब अव्यवस्था से घृणा करने लगे थे। उनके चरित्र के इसी पक्ष की जर्मन कवि गेट ने प्रशंसा की थी। अर्थतंत्र में वांछित विकास के लिए नियंत्रित व्यवस्था की आवश्यकता थी। जिस पूंजीपति वर्ग ने क्रांति का नेतृत्व किया था, उसी ने अब नेपोलियन के एकतंत्र का साथ दिया। नेपोलियन ने क्रांति की परिस्थितियों में अपनी योग्यता का परिचय दिया। उसे क्रांति पुत्र भी कहते हैं। प्रारंभिक दिनों में उसने क्रांति को स्वीकारा था और क्रांति के सेनापति के रूप में उसने न केवल फ्रांस के दुश्मनों को पराजित किया अपितु फ्रांस का सम्मान भी बढ़ाया, बल्कि फ्रांस की सीमाओं का विस्तार भी किया, उसकी धाक जमाई और अपने विभिन्न कार्यों से फ्रांसीसी जनता का अहम तुष्ट किया। जब से उसने पेरिस में शांति स्थापित की, वह व्यवस्था और अनुशासन का प्रतीक समझा जाने लगा। जिस प्रकार उसने विभिन्न इटालियन प्रदेशों में एक सुनियोजित प्रशासन की स्थापना की, उसे एक योग्य प्रशासक भी समझा जाने लगा। उसने अपने बारे में स्वयं ही कुछ किंवदंतियों का अथवा रोचक कथाओं का नियोजन तथा प्रसारण किया था, जिसके माध्यम से उसके व्यक्तित्व के चमत्कारिक पक्ष को विश्वसनीय ढंग से फैलाया जा रहा था। उसे अमर्त्य कहा जा रहा था, क्योंकि वह बार बार जोखिम उठाकर भी बच जाता था। वह अजेय समझा जा रहा था, क्योंकि सीमित साधनों में भी उसने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती थीं। उसे सभी स्वीकार करते थे, क्योंकि वह क्रांति की अतिशयता का विरोधी था। उसने क्रांति की उपलब्धियों को पूरी तरह नकारा भी नहीं। वह पुरातन व्यवस्था को पुनः संगठित करने और क्रांति को सुनियोजित करना चाहता था। फ्रांस की सत्ताधारी पूंजीपति वर्ग क्रांति के माध्यम से अपने लक्ष्य पर पहुंचकर अब स्थिरता और अस्थायित्व चाहता था, और वह नेपोलियन दे सकता था। उसे एकमात्र विकल्प समझा जाने लगा, क्योंकि योग्य लोग क्रांति काल में ही समाप्त हो चुके थे। जो बचे थे वे भ्रष्ट और अयोग्य थे। ऐसे लोग स्थिति संभाल पाने में असमर्थ थे। वाल्टर स्कॉट के अनुसार धनिक वर्ग अपने सुरक्षा की आशा में नेपोलियन के साथ हो गए थे। गरीब सहायता चाहते थे और भगोड़े फ्रांस लौटना चाहते थे। क्रांतिकारी इसलिए साथ थे कि उन्हें देश निकाला था या अन्य सजा न मिले। साहसी लोग विजय की आशा के साथ थे और कायर स्वयं की रक्षा के लिए। स्वीडन के राजदूत ने नेपोलियन द्वारा तख्ते पलट किए जाने के बाद लिखा, कुछ घृणित अराजकतावादियों को छोड़कर शेष लोग क्रांतिकालीन हिंसात्मक आतंक और मूर्खता से इतने उब गए थे कि उनके लिए कोई भी परिवर्तन बेहतर ही होगा। राजतंत्रवादी नेपोलियन में पुरातन व्यवस्था के लौटने की आशा देखते थे। तटस्थ के लोग केवल इसी में शांति और व्यवस्था की संभावना देखते थे। प्रबुद्ध गणतंत्रवादी यद्यपि गणतंत्र के लिए इसमें खतरा महसूस करते, फिर भी वे षड्यंत्रकारियों की जमात की अपेक्षा एक योग्य व्यक्ति की सत्ता को बेहतर समझते थे। ऐसी स्थिति में नेपोलियन का प्रादुर्भाव और उत्थान स्थितियों की देन थी। जिस स्थिति से उसने स्थिति पर नियंत्रण किया और कुछ दिनों में फ्रांस को यूरोप की शक्ति और महिमा का केंद्र बना दिया, वह फ्रांस में उसकी सत्ता की अनिवार्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण था। बुर्बो परिवार के लोग, विशेषकर भावी लुई 18वें ने नेपोलियन को घूस देकर अपनी ओर लाना चाहा था, लेकिन नेपोलियन ने जवाब दिया था, आप अपने हितों को अपने देश की खुशी और शांति के लिए कृपया भूल जाएं। धीरे धीरे नेपोलियन अपने स्थिति दृढ़ करता गया और फ्रांस भी उसकी उपयोगिता के बारे में स्पष्ट होता गया। जिस समय उसके हाथ में सत्ता आई उस समय उसकी तमाम बीजियों पर पानी फिर गया था और फ्रांस की सीमाएं आक्रांत थीं। वह जानता था कि सैनिक सफलता के कारण ही उसे स्वीकार किया गया है। उसने तत्काल ही अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर इस मान्यता को पुष्ट करना चाहा। हमारा अगला हेडिंग है इटली का दूसरा अभियान। पहले से भी अधिक सुनियोजित ढंग से शुरू किया गया ऑस्ट्रिया पर दोतरफा हमला हुआ। उत्तर और पश्चिम दिशा में उसके सेनापतियों ने और दक्षिण पश्चिम में उसने स्वयं हमला किया। मोरेंगा और मोरेंगा और होहेनलिंडेन, इसे एक बार और सुने, होहेनलिंडेन की प्रसिद्ध लड़ाइयों में फ्रांस की सेनाओं को शानदार विजय मिली और फिर ऑस्ट्रेलिया को फिर से एक संधि के लिए मजबूर होना पड़ा। ल्यूनविल की संधि एक प्रकार की कैम्पोफोर्निया की पुनरावृत्ति थी। फ्रांस की राइन नदी की सीमा पर पुनः अधिकार हो गया। इटली के गणतंत्रों का नेपोलियन स्वयं राष्ट्रपति बन गया। रूस का जार फ्रांस के विरुद्ध बने गुट से अलग हो गया। स्वीडन, डेनमार्क तथा प्रशा ने सशस्त्र तटस्थता की नीति अपना ली। स्पेन ने फ्रांस से मित्रतापूर्ण संबंध शुरू किए। अमेरिका में लुसियाना का प्रदेश फ्रांस ने खरीद लिया। अब इंग्लैंड के अतिरिक्त फ्रांस का कोई शत्रु नहीं था। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के फ्रांस, फ्रांसीसी द्वितीय और इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय को मैत्री की भावना से पत्र लिखा कि दुनिया के प्रबुद्धतम राष्ट्रों में युद्ध का कोई औचित्य नहीं है। झूठी महानता के लिए व्यवसाय, आंतरिक शांति और समृद्धि के वरदान को हम बलि क्यों चढ़ाएं? क्या यह स्पष्ट नहीं कि शांति ही हमारी जरूरत और सर्वाधिक महान गरिमा है? यह सच है कि यह एक छद्म था, फिर भी इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ दिनों के लिए युद्ध टल गया। इंग्लैंड ने भी समझौते का रुख अपना लिया। इंग्लैंड के कुछ राजनेता नेपोलियन के साथ समझौते की बात करने लगे। बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच आमिया की संधि हो गई। इंग्लैंड ने फ्रांस के गणतंत्र को मान्यता दी। क्रांतिकालीन युद्धों में फ्रांस से जीते हुए सिलोन, ट्रिनिडाड और अन्य उपनिवेशों को इंग्लैंड ने वापस कर दिया। नेपोलियन ने भी इटली में पोप के विजय प्रदेशों को खाली कर दिया। लंदन की सड़कों पर पहली बार नेपोलियन जिंदाबाद के नारे लगे। इससे यह स्पष्ट था कि यह संधि न होकर समझौते का भ्रम था। इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ही एक दूसरे से निपटने के लिए समय चाहते थे। नेपोलियन के सुधार। हमारा अगला हेडिंग है नेपोलियन के सुधार। इसी समय नेपोलियन को 3 वर्ष का मौका मिला। वह युद्ध की तैयारी जरूरी कर रहा था, परंतु वास्तव में फिलहाल उसकी तोफें खामोश थीं। इस अवधि में उसने विभिन्न सुधारों और अस्थायी कार्यों का क्रम शुरू किया, जो उसके शासन के अंत तक युद्धों के दौरान भी चलते रहे। कोंकुर्दा, नेपोलियन और पोप। हमारा अगला हेडिंग है कोंकुर्दा, नेपोलियन और पोप। फ्रांस की अधिकांश जनता अब भी रूढ़िवादी और कैथोलिक थी। फ्रांस में क्रांति विरोधी मानसिकता तैयार करने में क्रांतिकारियों ने पोप विरोधी विचारों की भूमिका थी। नेपोलियन ने स्वयं अपने को इटली अभियानों के दौरान न केवल पोप द्वारा शासित प्रदेशों को जीता बल्कि पोप की अवहेलना भी की थी। लेकिन उसने शासन के प्रारंभ में ही, जबकि वह सारे फ्रांस को आश्वस्त करना चाहता था कि उसने पोप से इस तरह का समझौता जरूर पोप से इस तरह का समझौता करना जरूरी समझा। पोप भी फ्रांस जैसे महत्वपूर्ण देश को अपने प्रभाव क्षेत्र से अलग नहीं रखना चाहता था। इस प्रकार यह संबंध सुधारने की पृष्ठभूमि थी। वार्ता शुरू हुई और 1801 में एक धार्मिक समझौता हुआ, जिसे कोंकोर्दा कहते हैं। इस समझौते के अनुसार कैथोलिक धर्म को फ्रांस में बहुमत का धर्म मान लिया गया। पोप ने चाहा कि फ्रांस का राष्ट्र धर्म हो और फ्रांस के राष्ट्र धर्म कैथोलिक घोषित कर दिए जाए, लेकिन नेपोलियन ने इसे स्वीकार नहीं किया। चर्च के अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार केवल कोंसुल को मिला। पोप को मात्र औपचारिक स्वीकृति का अधिकार मिला। चर्च को राज्य के स्वतंत्र नहीं बल्कि राज्य के नियमों के अंतर्गत माना गया। चर्च के अधिकारी राज्य के कर्मचारी मान लिए गए। पादरियों को सिविल कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात नागरिक संविधान को पोप ने पहले ही स्वीकार नहीं किया था, परंतु इस बार परोक्ष रूप से ही सही स्वीकार किया गया। क्रांति काल में हड़पी गई चर्च की संपत्ति वापस नहीं की गई। इसके बदले राज्य के चर्च के अधिकारियों को केवल वेतन देना स्वीकार किया गया। शिक्षा संस्थाओं पर चर्च के प्रभाव के अतिरिक्त उनका अधिकार भी समाप्त हो गया। अब यही शिक्षा संस्थाएं राजकीय संस्थाएं हो गई और चर्च से उनका संबंध नहीं रहा। गिरफ्तार पादरियों को इस शर्त पर छोड़ दिया गया कि वे नए संविधान का विरोध नहीं करेंगे। नए कैलेंडर में इतवार का महत्व समाप्त हो गया था। यह पूजा का दिन था। अब 14 जुलाई के पर्व को छोड़कर क्रांतिकारी कैलेंडर के स्थान पर वही पुराना कैलेंडर लागू हो गया। इन शर्तों से यह स्पष्ट था कि नेपोलियन के बिना कोई रियायत किए ही पोप ने वे सारी बातें मान ली जिन्हें क्रांतिकारी चाहते थे और जिनके कारण पोप ने उग्र विरोध किया था। इस घोषणा का कोई मतलब नहीं था कि फ्रांस के बहुमत का धर्म कैथोलिक है। फ्रांस का बहुमत इससे संतुष्ट नहीं था और उग्र लोग इसलिए नाराज थे कि नेपोलियन ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया था। कैथोलिक इसलिए नाराज थे कि वे प्राचीन व्यवस्था के संबंध में लागू नहीं किए गए थे। क्रांति ने चर्च की मध्ययुगीन व्यवस्था, जागीरें, सामंती अधिकार, दशमांश, भिक्षु भिक्षुणी, धार्मिक न्यायालय, धार्मिक एकाधिकार, अविश्वास रखने वालों को सजा देने का अधिकार आदि ध्वस्त कर दिए। नेपोलियन इन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार नहीं था और उसने ऐसा किया भी नहीं। जान रोबिके के अनुसार फ्रांस में कई स्थानों पर इस समझौते की प्रतियां जलाकर विरोध किया गया, लेकिन नेपोलियन धर्म को राज्य के हाथ का एक उपकरण मात्र समझता था जिसका वह राज्य की आवश्यकता अनुसार उपयोग करता। इस समय नेपोलियन के इस दृष्टिकोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके मन में पोप के प्रति कोई सम्मान नहीं था और कितनी ही बार जानबूझकर उसने उनको अपमानित भी किया। 1804 में जब नेपोलियन ने गणतंत्र का मुखौटा उकार फेंका और जनमत संग्रह के बाद फ्रांस का सम्राट बन गया, तो अपनी शक्ति और गरिमा के प्रदर्शन के लिए उसने फ्रांस से महामंडित चर्च नूत्रदाम में राज्याभिषेक की तैयारी की। पेरिस को दुल्हन की तरह सजाया गया। संपूर्ण यूरोप के शासक और विशिष्ट लोग इसमें हिस्सा लेने पेरिस पहुंचे। पोप स्वयं अपने हाथों से नेपोलियन का राज्याभिषेक करने पेरिस आया। नेपोलियन भी विश्व की तमाम तानाशाहों की भांति अंधविश्वासी था। उसे विश्वास था कि 2 दिसंबर उसके लिए शुभ तिथि है। उसी दिन नूत्रदाम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों के बाद जब पोप का पारंपरिक राजमुकुट नेपोलियन के सिर पर रखा गया तो नेपोलियन ने मुकुट पोप के हाथ से लेकर स्वयं अपने हाथों में पहन लिया। सारी सभा स्तब्ध रह गई। सबके सामने पोप के इतने बड़े अपमान की कल्पना नहीं की जा सकती थी। कहते हैं नेपोलियन ने उस समय बुदबुदा कर कहा था, मैं फ्रांस का राजमुकुट धूल में पड़ा पाया है। मैंने फ्रांस का राजमुकुट धूल में पड़ा पाया है। अपनी तलवार की ताकत से मैंने मुकुट उठाया है। उसे पहनने का श्रेय मैं दूसरे को क्यों दूं? यदि उसने यह भी न कहा होता तो नेपोलियन का दंभ कुंठाग्रस्त था और उसे सम्मानित लोगों को बेइज्जती करने में तृप्ति होती थी। पोप और धर्मपरायण जनता ने नेपोलियन को इसके लिए कभी भी माफ नहीं किया। बाद में नेपोलियन ने इंग्लैंड के विरुद्ध व्यावसायिक युद्ध शुरू किया तो पोप ने पूरा सहयोग नहीं किया। पोप के अधीन राज्य जीतकर उसे बंदी तक बना लिया गया। इन सभी चीज़ों का नेपोलियन के पतन में उतना अधिक महत्व है जितना कि स्वयं नेपोलियन का। नेपोलियन और पोप के बीच संबंधों से यह स्पष्ट है कि नेपोलियन ने राजनीति को भी ऊपर रखा और धर्म का उसी के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह वह धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्थापक था। पर धर्म का सवाल एक नाजुक सवाल है और कभी कभी उसकी नाजुकता का अवहेलना की और स्वयं मुंह की खा गया। नेपोलियन की कानून संहिता। हमारा अगला हेडिंग है नेपोलियन की कानून संहिता। नागरिक कानूनों का संकलन नेपोलियन की का सबसे अस्थायी कार्य सिद्ध हुआ। आज भी फ्रांस में एकमात्र मान्य विवाह पद्धति सिविल मैरिज के साथ वर वधु को नेपोलियन की संहिताओं की धारा के अंतर्गत शपथ लेनी पड़ती है। नेपोलियन ने स्वयं भी कहा था, मेरी जो भी वस्तु कभी विस्मित नहीं की जा सकेगी वह मेरे 40 युद्धों में विजय नहीं बल्कि कानून संहिता है। हालांकि नेपोलियन ने उसे सिविल कोड के लिए याद किया जाता है। कुल मिलाकर 5 तरह के कानूनों का संकलन हुआ। एक सिविल कोड अर्थात नागरिक संहिता, दूसरा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अर्थात नागरिक प्रक्रिया की संहिता, तीसरा पिनल कोड अर्थात फौजदारी कानून, चौथा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अर्थात अपराध मूलक प्रक्रिया का संहिता, अपराध मूलक प्रक्रिया की संहिता, पांच कमर्शियल कोड अर्थात व्यवसाय संबंधी कानून। इन कानूनों को 3 स्रोतों से ग्रहण किया गया। फ्रांस ने परंपरागत कानून, रोमर कानून, रोमन कानून और क्रांति के अनुभव। यहाँ हम नागरिकों के ही प्रमुख पक्षों का अध्ययन करेंगे। क्रांति के समय कानून की के लिए सबकी समानता के साथ सिद्धांत को कानून का स्वरूप दे दिया गया। इस तरह विशेषाधिकार और सामंती नियम समाप्त हो गए। बड़े पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकारी मानने का कानून भी समाप्त कर दिया गया। पुत्रों को बराबरी का अधिकार दिया गया। विवाह को एक पवित्र और साधारण स्थितियों में अस्थायी संबंध माना गया। धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत स्वीकार कर चीर प्रताड़ित यहूदियों को भी इतिहास में पहली बार सम्मान दिया गया। नागरिक कानूनों पर नेपोलियन के व्यक्तिगत विचारों का ही नहीं उसकी पारिवारिक स्थिति का भी प्रभाव था। नेपोलियन के पूर्वाग्रहों से देश का कानून एक ही व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखकर निर्धारित था और पुरुषों को परिवार में अधिक अधिकार दिया गया। इस संहिता की इसलिए भी आलोचना की जाती है कि यह अत्यंत संक्षिप्त थी और व्याख्या के समय अर्थ का अनर्थ भी हो सकता था। इस कोड के निर्णय में नेपोलियन ने व्यक्तिगत रूप से बहुत रुचि ली थी। वह स्वयं समिति की अधिकांश बैठकों में उपस्थित रहता और परिश्रम करता था। यह सच है कि यह संहिता एक विशेष हित को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, लेकिन इसने देश के कानूनों को एक रूपता प्रदान की और व्यवहारिक रूप से न्याय व्यवस्था को अपेक्षाकृत आसान बनाया। जहाँ तहाँ नेपोलियन की सेनाएं गईं, यह कोड लागू किया गया और नेपोलियन की पराजय के बाद अधिकांशतः यूरोप में भी यह क्रियान्वयन किया गया। इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि यूरोप के बाहर भी इसे लागू किया गया। यह संहिता आज भी कई देशों के कानून का आधार है। नेपोलियन के विषय में यह कहा जाता है कि उसने प्राचीन व्यवस्था और क्रांति का समन्वय किया। इसका प्रामाणिक परिचय इस संहिता में ही अधिक परिलक्षित होता है। हाँ, उसने पुराने कानूनों के साथ साथ क्रांतिकालीन कानूनों के अनुभवों की का भी समन्वय किया। इसलिए अमेरिकन इतिहासकार ब्रून का मत है कि ये कोड क्रांति का सारांश है। जब नेपोलियन को दूसरा जस्टिस नियन कहते हैं तो इसका तात्पर्य बस इतना है कि जो काम पहले जस्टिस नियन ने किया था वही नेपोलियन ने अपने समय में किया। प्रशासन, अगला हेडिंग है प्रशासन। क्रांति के समय प्रशासन का मुख्य आधार था स्थानीय स्वायत्तता और चुनाव। ये दोनों ही बातें नेपोलियन के विचारों के विपरीत थीं। उसने उन्हें समाप्त कर दिया। उसने देश के प्रशासकीय विभाजन को अपने पूर्ववर्ती क्रम में ही रहने दिया, लेकिन सुगठित और केंद्रीकृत शासन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति और कार्यविधि का स्वरूप पर बल दिया और अब हर विभाग में राजधानी में नियुक्ति और नियंत्रित प्रशासनाधिकारी और उसके नायाब नियुक्त होने लगे। नगरों और कम्यून में के मेयर भी केंद्र में ही नियुक्त होते थे और प्रशासन पुनः पुरातन व्यवस्था के केंद्रीकरण के आधार पर व्यवस्थित होना शुरू हो गया। इस शासन की आधारशिला वे अधिकारी भी थे जो ब्रिटिश भारत के आईसीएस अधिकारियों की भांति शासन के लिए इस्पात ढांचा प्रस्तुत करते थे। प्रशासन का यह स्वरूप थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ आज भी मौजूद है। फ्रांस में दगाल के प्रादुर्भाव से पहले राजनीतिक अनिश्चितता बरकरार बनी रही, लेकिन प्रशासन कुशल नौकरशाही चलाते रहे। इस नौकरशाही का पुनर्गठन नेपोलियन ने किया था। सारी सत्ता पहले प्रथम कौंसुल और बाद में सम्राट के रूप में उसी के हाथ में थी। वही सारे निर्णय लेता था। मंत्री उसके आज्ञाकारी सेवक होते थे। व्यवस्थापिका के विभिन्न सदनों में उसके आदमी होते थे जो फ्रांसीसी जो उसकी आज्ञाओं पर स्वीकृति की मुहर लगाने के लिए मजबूर थे। वह कहा करता था फ्रांसीसी जनता स्वतंत्रता नहीं चाहती थी, इसलिए समानता के मार्ग में उसने कोई रुकावट नहीं डाली और समानता के लिए किए गए क्रांतिमूलक कार्यों को स्वीकार कर लिया, लेकिन तनिक भी ढील नहीं दी। समाचार पत्रों पर कितना नियंत्रण था यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि उसकी ट्रिफेगलर के युद्ध में हुई भयंकर निर्णायक पराजय के बाद पूरी तरह पता लगने में लोगों को 10 वर्ष लगा। उसने अपना गृह मंत्री षड्यंत्रकारी फूसे को नियुक्त किया। जब वह नेपोलियन का पक्षधर था उसने जासूसों और नियंत्रणों का जाल बिछाकर नेपोलियन के तंत्र को शक्तिशाली बनाए रखा, लेकिन नेपोलियन का पतन असंभावी देखकर वह उसके विरुद्ध भी षड्यंत्र करने लगा था। शिक्षा, अगला हेडिंग है शिक्षा। प्राचीन काल में यूरोप में शिक्षा व्यवस्था चर्च की गुलाम थी। किसी समाज की मानसिकता के अनुकूल बनाए रखने के लिए हर व्यवस्था को शिक्षा पद्धति और उसके स्वरूप को अपने अनुकूल बनाए रखती थी। पुनर्जागरण के बाद जेसुट नाम के कट्टर कैथोलिक पादरियों ने शिक्षा पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने पुरानी पद्धति बदलकर नई शिक्षा नीति की शुरुआत की थी, लेकिन तात्कालीन अव्यवस्था में समुचित संगठन नहीं हो पाया था। नेपोलियन के लिए इसे बदलना जरूरी था, क्योंकि उसे ऐसे नागरिक चाहिए थे जो स्वयं नेपोलियन और उसके तंत्र के प्रति विश्वास रखें। शिक्षा के राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को स्वीकार करते हुए उसने शिक्षा को 3 स्तरों प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च पर संगठित किया। प्राथमिक स्तर से ही अनुशासन और सैनिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया। सूत्रों और प्रश्नोत्तरों के आधार पर नेपोलियन के प्रति